राम सरदे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज 23 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम सिंथल राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण 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 क्या सुना सर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण सबका जीवन शुद्ध हो निर्मल हो इसके लिए आवश्यकता है शासन की। मानो शिक्षा के अधीन रहे, शासन करने वालों का अधीन रहे वो प्रजा ठीक रहती है। वो शासन दो तरह का होता है, एक राजाओं का होता है, एक संत महात्माओं का होता है। तो राजाओं का होता है वो राजसी होता है, संत महात्माओं का बड़ा सात्विक होता है। और राजा लोग अपने हुक्म से चलाना चाहते हैं और संत महात्मा का हुक्म लेकर लोग चलते हैं, ये उनमें अंतर होता है। वे हुक्म लेकर हम चलाना ऐसा नहीं है, उनको मानते हैं। दोनों बातें कुछ कुछ देखी हुई है। गड़बड़ी करते हैं तो भी राज में कह दिया जाएगा तुम ठीक नहीं करते हो, ऐसा है। इसी तरह से सत्संग करने वाले आपस में कुछ खटपट करते तो देखो हम महाराज को कह देंगे, ऐसा करते हो महाराज को कह देंगे, ऐसे बात करना भाई। तो शासन दोनों को चलता है। पर महाराज वो कहने से डरते हैं, मानो गलती करेंगे तो ठीक नहीं है ऐसा। इसलिए का सात्विक शासन उनका होता है। और दोनों में अगर देखा जाए तो राजा लोग भी संत महात्माओं के पास में जाकर सलाह पूछते थे, राज्य की संपत्ति के विषय में भी वे पूछते कैसे करें। वो राज्य करते थे पर मालिक भगवान को अथवा संतों को मानते थे, दोनों तरीके से भगवान को मानते थे। जैसे बीकानेर दरबार है तो लक्ष्मी नारायण भगवान लक्ष्मीनाथ जी है, उनका ये सब उनका ही राज्य मानते थे। जैसे एकलिंग जी का महाराज के ही मानते हैं उदयपुर वाले, ऐसे अपने ईश्वर का ही मानते हैं। अपने ईश्वर को उसी राज्य है, उसी हम कर रहे हैं काम, हम कर रहे हैं मालिक, ऐसा मानते थे। ऐसे संत महात्मा ही भगवान का ही मानते, भगवान का मानते हुए शासन कर रहे हैं, ये नहीं था उनमें। हम कर रहे हैं ऐसा नहीं करते थे, परंतु उनके साथ शासन में ऐसा रहता था। राजा लोग दो होते हैं, वे भी आपस में खटपट करते हैं, दो नहीं रहते। संत महात्मा सही नहीं रह जाए, पीछे रह जाए, उनको सिर्फ खटपट होती नहीं। खटपट वहां होती है जहां स्वार्थ होता है, जहां अभिमान होता है, अहंकार होता है, कुछ व्यक्तित्व में विशेषता चाहते हैं, वहां अभिमान होता है। अभिमान है वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाद नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान, संपूर्ण कितना शोक संसार में हो सकते, दुख हो सकते हैं, उनका अभिमान जड़ बसाया है। अभिमान से दमोदर को अभिमान से क्रोध पारुषी में बचे, तो अभिमान को बहुत ऐसा दूर बताया है। जहां इन गुणों का वर्णन हुआ है, मैंने पढ़ा है, तो उनमें दंभ और अभिमान ये बहुत दूर तक रहते हैं, ये जल्दी दूर नहीं होते हैं। साधक की बड़ी एक विषम घाटी है ये। दंभ को दर्प को घमंड को अगर दूर कर दे तो बहुत जल्दी आध्यात्म उन्नति होती है। तो एक तो अपने में दिखावटी पर वो ऐसा है कि लोग देखे तो उसे दिखावटीपन होता ही है, परंतु नहीं देखने पर भी एक दंभ होता है, दिखावटीपन है। मान लो हम एकांत में भजन कर रहे हैं, कमर बंद है, कोई हमारे को देखता नहीं, परंतु बाहर से किसी एक हमारे प्रेमी है, हमारी श्रद्धा बनते रहता है, ऐसा कोई अफसर है, ऐसा कोई अच्छा आदमी बाहर आ गया, उसकी बोली सुनते हैं तो वही आसन ठीक बैठ करके अच्छे कर लेते हैं, ठीक हो जाते, होशियार हो जाते हैं। अब वहां देखता नहीं, वही को देखता नहीं, और को कोई नहीं देखते, परंतु मन में ऐसा बात आती कि वो आवे तो दिखाने पर तो होते हैं, पर जहां देखना नहीं होता वहां भी वृत्ति ऐसी होती है। तो क्या है, ये दम्भ है, दिखावटीपन है, ये भीतर भाव रहता है तो ऐसा होता है। तो ये दम्भ और अभिमान इसमें दोनों आए, दम्भो दर्पो अभिमान से, दर्पो और अभिमान से, दर्प आया अभिमान आया। मैंपन को लेकर के विलक्षणता अपने देखती है, वो दम्भ होता है, ममता की चीज को लेकर अपने विशेषता देखता है, वो दर्प होता है, घमंड होता है, हमारे धन धन इतना है, हमारे पास जमीन इतनी है, हमारे आदमी इतने है, ऐसे ममता की चीजों को लेकर अपने में अधिकता का अनुभव करना ये दर्प है, घमंड है। और मैं विद्वान हूँ, मैं समझदार हूँ, नीतिज्ञ हूँ, जानकार हूँ, ऐसे लेकर के जो अभिमान होता है वो अभिमान कहलाता है, अहंकार कहेगा। तो चीजों को लेकर के हो चाहे मनमहनता को लेकर हो, चाहे ममता को लेकर हो, अपने कुछ विलक्षणता का अनुभव करना है, ये एक दम्भ अभिमान और अहंकार है। तो अहंकार है ये सबसे प्रबल है, बड़ी विचित्र बात है ये। इस पर विचार किया जाए तो बहुत गहरा विचार है इस पर। अपने लेख लिखे अभी उनमें थोड़ा लिखा है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम में भिन्ना परिदृष्ट था अपरा इयम, ये एकदम से दो बार आया। वहां से इदंग से इदंग कौन थे क्षेत्रम, ये इदंगता से कहा। तो इदंगता क्षेत्र में है ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार सब आ जाते हैं क्षेत्र में। वर्णन किया है महाभूतान्य अहंकारों, जहां क्षेत्र का वर्णन है पांचवें श्लोक में, इदंग से के बाद ये पहला श्लोक है। तो उसमें महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त मेव से इंद्रियाणी दशई कंच पंचतंत्री गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना जैसी एक क्षेत्र समासेना सविकार, ये विकार वही क्षेत्र हुआ। तो ये क्षेत्र इदंता से कहलाता है। तो ये मान बुद्धि अहंकार सब इदंता से है। ये थोड़ी सी बारीक बात है, हम सबको इदंता से ये है यह देखते हैं, पर अहंता को इदंता से नहीं देखते, अहंकार को अपने रूप से देखते हैं। मैं हूँ अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, इससे मूढ़ता आ जाती है, अपने को एक देश में परिच्छिन्न मान लेता है, उससे एक अपने में अभिमान आता है, उससे कर्तृत्व अभिमान होता है, और कर्तृत्व और भोगतृत्व ही संसार है। संसार क्या कर्तृत्व है, भोगतृत्व है। इससे नाहंकृत भाव बुद्धि से लिप्यते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि का लेप नहीं है, तो स्वाभि से मान लोग न हंसी न निबती, दुनिया मात्र के लोगों को मार दे तो वो मारता नहीं है और न निबदते बनता भी नहीं है। न निबदते का मतलब भोगतृत्व नहीं है, और मार दे तो उसमें कर्तृत्व नहीं है, न करता है न भोगता है, जिसकी अहंकृत भाव नहीं, अहंकृत भाव होता है वह सब कुछ होता है। तो अनादित्वा निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी मानते है, न करोति न लिप्यति, न करोति कर्तृत्व नहीं है, लिप्य नहीं है। तो ये मैंपन और मेरापन नहीं है वहाँ, कर्तृत्व होता है। ऐसे कर्मयोग है वो मेरापन को दूर करता है, और ज्ञान योग अहंता को दूर करता है, परंतु फिर आगे चलने से दोनों दूर कर देते हैं। मेरापन दूर होता है तो मैंपन भी मेरा पर रहता है, अपने अहंकार में भी ममता रहती, अभिमान में भी ममता, तो ममता सर्व छूटने पर अहंता भी छूट जाती है, और अहंता छूटने पर ममता छूट ही जाती है, कि अहंकार तो मालिक बना हुआ है ना, ये छूट जाता है। तो ये जहाँ रहता है वहाँ का शासन राजस होता है, और इनसे रहित होने पर शासन होता है वो सात्विक होता है, बड़ा सुंदर होता है, उसने लोगों को बड़ी शांति मिलती है, उनका भी एक भय होता है, संत महात्माओं से भी भय लगता है। वो किस विषय में लगता है, कहीं वे सास निषिद्ध काम करते हैं, आपस में खटपट कर लेते हैं, तो वह डर लगता है, महाराज क्या कहेंगे, संत क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, ऐसा एक भीतर में भय होता है। वो भय उद्धार करने वाला होता है। यद्यपि देवी संपत्ति में सबसे पहले अभयम सत्व सुषुप्ति अभय आया है, परंतु ये भय भी अभय करने वाला भय होता है। गुरु डर, हर डर, जगत डर, डर करने में सार, हृदय डरिया तो ऊब जान गल खाई मार। हर डर, गुरु डर, जगत डर, भगवान का डर हो, गुरु का डर हो और जगत का डर हो, तो कोई ऐसा काम खराब न करे जिसमें लोगों में बेइज्जती हो जाए, गुरु से कहीं विमुख हो जाए, भगवान की विस्मृति हो जाए। जब डरिया से उभरिया, जो डरते वो तो बस गए, डर का फल खाई मार, जो का फल मार खाता है, तो ये डर उचित है। अभयमत कहने का मतलब भय दो तरह का होता है, एक बाहर से आता है, एक भीतर से पैदा होता है। हम आचरण और नियत खराब करते हैं तो भीतर से भय पैदा होता है, और चोर डाकू सांप आदि का भय बाहर से आता है, ये भय दोनों मिट जाते हैं, वो अभय होता है। भगवान श्री राम जी ने भी कहा अभय लो जो तुम्हें डराई, दोनों अर्थ होते हैं इसके, पर अभय हो जो तुम्हें डर, तुम्हारे को भी जो डरा देता है वो अभय होता है, अभय वो हो जो आपसे डरता है। लक्ष्मण जी ने बड़ी विशेष बात कही है कि महाराज मारे तो पाप ही तुम्हारे, आप मारो तो हम तो आपके पैरों ही पड़ेंगे, क्योंकि आपसे हम जीत जाए तो पाप लगे, पाप और मूल है वो। अब क्या करें जो कहीं करो ना, नहीं हो गया ना, मार वाली सब ले गए जी, पाप रो धूप है वो, नागोड़ो सुख है जो बसे पाप अब कीर्ति आ रहे, इस बात में मार रहे हो पाप है इसको मारे, मार जाए तो पाप लग जाए, हार जाए तो अब से सो जाए, और पाप रो धूप अलग रहो सुख है बड़ा आपसे नहीं हो ठीक है बार तो पाप है ये तुम्हारे। रामचंद्र जी महाराज ने कहा अभय हो जो तुम्हें डराई, तो फिर डर गए, फिर धर्मस्वान दे दिया चलेंगे तब करने के लिए। फिर दोनों ने कहा क्षमा सुबह मंदिर धूम रहता लक्ष्मण जी राम तो भ्राता बट पापी है, ज्यादा पापी है, छोटा सो रहा है वो मार दो गया, आज मेरा कुंठित निर्पघाती परस भरसा है वो भी कुंठित हो रहा है, क्या बात है ऐसी तेरी कही। तो अभय हो जो तुम्हें डरा, ये भगवान से डरते हैं वो अभय हो जाते हैं, तो संत महात्माओं से डरते हैं लोग तो भी अभय हो जाते हैं, डरते हैं तो क्या होते हैं ठीक नीति पर चलेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, ठीक तरह रहेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये अभय ये किस बात का है, ये अभय अपने आचरणों को लेकर के है, अपने सुधार के लिए भय है, ये भय सार है। अपने को भय के मेरे को मार डालने के लिए कोई बात नहीं है, भगवान राम जी ने कह दिया है कि महाराज क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक थे पावर ना लड़े सुखे न काल के न होने, लड़ाई से हमें लड़ने से लड़ने से नहीं डरते हैं। अर्जुन ने यही कहा कि महाराज मेरे को भय लगता है तो पाप का ही लगता है, मरने से भय नहीं लगता है मेरा, मैं जो अभी विचार कर रहा हूँ जो न करूँ तो गुरुजनों को मारने से डरता हूँ, तो मरने से नहीं डरता हूँ, मेरे को मरने का भय नहीं है, कोई बात नहीं मरने क्या बात है। तो सूर्यवीर के सिर नहीं होता, अर्दानी के धन नहीं होता, ये होते ही नहीं, उन्होंने वो सब छोड़ देता है, परवाह नहीं करता। तो संत महात्माओं का जो भय है उनका शासन है बड़ा ही सात्विक होता है, वो शासन स्वीकार करने वालों के अधीन होता है, राजा का शासन अपने अधीन होता है, वो अपना अधीन करके आधिपत्य से शासन करता है, और संत महात्मा अपने अधीन नहीं करते, दूसरे उनके अधीन हो जाते हैं, शासित हो जाते हैं, शासन में रहते हैं अपने कल्याण के लिए उद्धार के लिए, तो उनसे उनका सुधार होता है, भय लगता है उस भय से सुधार होता है, अच्छा आसन करते हैं। तो संत महात्माओं का भी एक शासन है, इसका भी शासन है बड़ा, राजाओं के ऊपर शासन संतों का होता है, महात्माओं का होता है, वे सलाह पूछते हैं संत महात्माओं से पूछते हैं, और कहते हैं तो इस तरह पूछते हैं। नारद जी आए हैं युधिष्ठिर महाराज के पास महाभारत में, तुम्हारा जो पूछा है क्योंकि तुम्हारा ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, ये समाचार पूछने का ढंग भी इस तरह का है, तुम्हारा राजगार ठीक है, प्रजा ठीक है, सैनिक ठीक है, गुप्तरों का समुदाय तो ठीक है ना, आपको रिपोर्ट ठीक मिलती है ना सभी, ऐसी विचित्र बातें पूछी नारद जी ने, वो पूछने पूछने में शिक्षा दी है, मानो ऐसा तुम्हें होशियार रहना चाहिए इस विषय में, ऐसी शिक्षा दी है, तो संतों को शिक्षा देने का ये प्रकार होता है, विलक्षण है। नारद जी के गुणों का वर्णन आया है वह पढ़ा जो मेरे को आश्चर्य आया, गाने बजाने में होशियार है, और की बात जैसे युद्ध करने में भी नारद जी बहुत होशियार है, आश्चर्य आया महाभारत में ऐसे गुणों का वर्णन आया है, तो युद्ध करने में बड़े तेज है नारद जी महाराज, तो अच्छे पुरुषों में गुण होते हैं, इस बात भरती ने कहा विपरी धैर्य साधे क्षमा सद सेवा कटुता युद्ध विक्रम जैसा प्रकृति सिद्ध मृदंगी महात्मना, महापुरुषों की प्रकृति सिद्ध बातें होती है, स्वभाव करना नहीं पड़ता, उन्होंने विपत्ति धैर्य विपत्ति में धैर्य हो जाए, विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, कितना अभ्युदय अपने पास में होते सहनशीलता होती सब पचा देते हैं, स्वदेशी वाक पटुता बाड़ी में सभा के बीच बोलते बाड़ी में बड़े चतुर होते हैं, मीठे होते हैं, युक्ति संगत बोलते हैं, युद्ध विक्रमा और युद्ध आ जाए तो पराक्रम करते, वहां अच्छी तरह से जैसे सीताब रुचि यश में रुचि होती है। अब धीरे ये क्षमा अभ्युदय होने पर क्षमाशील होते हैं। सदस्य बात पटता यदि सदस्य प्रकृति से दमे देंगे महात्मा नाम उनमें ऐसे गुण स्वतः स्वाभाविक होते हैं। वह डरते नहीं, कोई तो भय नहीं है। भय किस बात का है? अपने आप तो खराब काम करते नहीं, खराब रहते जाते भय लगता है। रावण से रावण वश वर्ती नर नारी सब स्त्री गुण डरते थे, देवता डरते थे, राक्षस डरते थे, परंतु सीता जी की चोरी कर दी तो उतरते ही ऐसे डरता है। इधर देवता गुण देखता है, जो कुपंथ में पग देता है ना, तो उसकी ये बुद्धि लवलेश ने बुद्धि शर्म ये नहीं देते है और डर लगता है, भय लगता है। तो विचार भीतर में खराबी आ गई तो ये भीतर की खराबी का भय संत महात्मा से डरता है, लगता है। राजा अंदर तो बाहर की नीति विवेचन करे खरबना डर लगता है, और संत महात्माओं को डर है भीतर से, तो उनका शासन बड़ा ऐसा सात्विक होता है, उससे प्रजा में बड़ी शांति मिलती है। और संत महात्माओं का राज दिया हुआ नहीं होता, किसी का उसको दे दे किसी बात नहीं, कड़े बोलते भी नहीं, करते तो भी लोग डरते हैं। उड़ीसा में कह देंगे महाराज हम ऐसे झूठ बोलते रहते, पर आप ना करें झूठ नहीं बोलेंगे, आपका घर थोड़ी कहेंगे, आप ही कह देते हैं। ऐसा दो आदमी और खटपट होती है, मिटती नहीं, संत महात्मा पास जाएंगे महाराज हमारी खटपट क्यों रखनी है, आप ही छोड़ लेते हैं, आपस में सुलह हो जाती है, समझ हो जाती है। तो ये शासन वो विलक्षण रहे तो अपने को ऐसा अच्छा बनाना चाहिए कि जिससे हम अभय हो जाए, निर्भय हो जाए, मन बाहर का आचरण भी कोई खराब न करे और भीतर के भाव भी गंदे न करे। संतों के शासन से यही होता है, भीतर के भावों को गंदा न होने दे और डर के कारण से और आसन न आवे, राज का भय होता है तो भी अभय होते, निर्भय होते, कभी उन्हें होता ही नहीं भय किसी बात का भी। इसलिए कहते ये शासन है, इस शासन से प्रजा ठीक रहती है। शिष्य इससे बनता है, शिष्य शब्द है शासन योग्य शिष्य। जैसे गुरु होते हैं वो शासन करते हैं, ऐसे पति शासन करता है तो वो शिष्य कहलाता है, पति को गुरु देना, परंतु स्त्री को भी अधिकार है कहने का, वो शास्य होते। जैसे धृतराष्ट्र ने गांधारी, धृतराष्ट्र को गांधारी समझाती है कि कर क्या रहे हो आप, ये पांडव द्रौपदी को जल्दी राजी करो, एक वचन कह दे तो भस्म कर देगी, कुल का सब का नाश कर देगी। ये द्रौपदी लाई नहीं है तेज, वो कहीं काम में लाई नहीं है, वो दुख पा लिया, कष्ट उठा लिया, किसी की लात भी सह ली, हर करके ले गया, उठाकर ही ले गया, उन्होंने कुछ नहीं किया द्रौपदी ने, सीता माता ने कुछ नहीं किया, कोई साफ दे दे कुछ कर दे कुछ नहीं किया। ठीक है, शासन बड़ा विचित्र होता है, ठीक है, तो ऐसा करते नहीं, परंतु मैं शक्ति शक्ति और क्या कह शासन विलक्षण होता है। गांधारी कितनी ऊंचे दर्जे की पतिव्रता, जब सुना कि तुम्हारे विवाह होगा ऐसा पति जिसके आंख नहीं है, तो जो सुख पति को नहीं वो लेना ही नहीं है, आंख रहती है पट्टी बांध ली। हमारे भारत की इन महिलाओं में बहुत विलक्षण, बड़ी अलौकिकता, बड़ी विचित्रता है, इतनी विचित्रता पुरुषों में नहीं, पुरुषों से विलक्षण है। पर आजकल तो हत्या हो रही है बहुत जोर से, निर्लज्जता क्या क्या कह रहे उनमें, सलज्जा गणी का नष्टा, निर्लज्जा से कुलंगना, ये कुलंगना हूँ आधे छोरियों को इस तरह से शिक्षित कर रहे, वो शिक्षित कहलाती है जो छोरिया होती वो, तो वो आचरणों में ऐसी हो जाती है, निस्संग हो जाती है, माँ बाप का नहीं मानती, अगर सास को जाकर नहीं मानती उनसे भी लड़ाई गलती है। कैसी कुछ भी हो परंतु तुम्हारी तो सास है, कई कई घरों में बस विचित्र विचित्र बातें आपने सुनी है। एक कोई राजा है उसकी रानी है, तो वो साधारण घर की है और रानी के बेटा ब्याहेगा, बड़ी बड़ी घराने की लड़की लाए वो, अब वो लड़की नहीं करती सास के मैं नमस्कार क्या करूं, ये तो हमारे छोटे घर की है, मैं तो बड़े घरों की हूँ, तुम्हारा कितनी बड़ा घर है, बहू ये सास है तुम्हारे, सुहाग की माँ है जो सौभाग्यवती कहलाती है, वो सौभाग्यवती जिससे होती है वो सौभाग्य है, ये इस वृक्ष का फल है, इस वास्ते इनकी आज्ञा मानो, इनकी राजी लो, और माँ के राजी से फायदा बहुत होता है। मेरे तो मन में आती है ऐसी कि माताओं का आदर माँ के रूप होने से ही होता है, हमें दुख इस बात का होता है कि आज माँ बनने से ये संकोच करते, ऑपरेशन करा लो, ये कर लो, छोड़ा नहीं जल में, तो क्या केवल भोग साधन के सिवाय कुछ इज्जत नहीं है इनकी, नारी जाति का इससे बढ़कर क्या फजीती होगी बताओ, क्या आदर है बताओ, माँ का आदर सबसे अधिक है। युधिष्ठिर महाराज के सामने कितनी विचित्र बात आई, द्रौपदी पर विजय करके पहुंचे माँ से, कहे माँ हम एक वस्तु लाए, कि बेटा पहुंचू ले, पहुंचो क्या ले, वो तो राजकन्या है, उस पर विजय करके अब आए, तो बेटा मेरी बात सती कैसे होगा, सती करेंगे तुम्हारी बात, तो झूठी नहीं उड़ जाएंगे, कितनी विचित्र बात। द्रुपद से गा करके हम तो पांचों भाई ब्याह करे, द्रुपद ने कहा वाह तुम कैसे करोगे, अर्जुन तुम्हारे से छोटा है, इसने मत्स्य वेदन किया है, अब ये तुम्हारी पुत्र की तरह, पुत्री की तरह है, छोटे भाई की बहू है, उसको करोगे ऐसा कैसा, हम तो करेंगे, माँ ने कह दिया। कितनी विचित्र बात, देखो माँ का आदर देखो आप, कितना आदर है, माँ ने कह दिया, निकल गई जबान ऐसे ही, हम सती करेंगे। फिर पांचों ने किया, पांच ब्याह हुआ, पहले जिसके पास भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव बारी बारी बखवारी होगी, फिर ब्याह हुआ, फिर बारी भी होगी, ऐसे पांचों ने विवाह किया, करेंगे माँ ने कह दिया। ब्यास ने फिर उत्तर दिया, ब्यास जी प्रकट हो गए, शेर जी ने सुनी ये कहता, शेर जी कहते अगर द्रुपद मिट जाता तो वो युद्ध करके मार देते, उसको अपना ब्यास पांचों करते ही, ये तो होता ही सब कुछ ऐसे हो जाएगा, ये तो कह दे माँ ने कह दिया। कितनी माँ का कितना आदर है, कितनी विलक्षणता है। युधिष्ठिर ने कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, व्यास जी ने कह दिया युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बनाकर युद्ध होगा, उसमें क्षत्रियों का दास हो जाएगा, बहुत बड़ा भारी अनर्थ होगा। युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, युद्ध करने से तो होगा, युद्ध करूंगा ही नहीं, फिर युद्ध का विचार ही नहीं किया, वनवास दे दिया, वनवास सह लिया, वनवास में रहे, जंगल में रहे, 12 वर्ष वनवास, एक अज्ञातवास, सब कुछ रहा, और अपने युद्ध नहीं करना है विचार कर लिया, अपने से निर्वात हो ही जाता है, उम्र निकल जाएगी, क्या बात है, युद्ध नहीं करना है। माँ कुंती ने कह दिया कि अब युद्ध करो। जब कृष्ण भगवान प्रस्ताव लेकर गए है ना हस्तिनापुर, उस समय में मात कुंती ने कहा कैसे, ये तो धनंजय वाच्य, युधिष्ठिर को भी कहा और नित्योद्युक्त हो विकोदय, हम उद्युक्त रहेगा विकोदस नहीं कह जा रहा, क्या कहना है कि अगर संघ क्षत्रिया सूते तस्वीर काल हो, ये मार्ग जिस दिन के लिए वीर क्षत्रियाणी पुत्र पैदा करती है, बेटा वो दोबारा दिन आ गया, अब दूसरों से छुड़ाओ इस जमीन को, ये दूसरा ठीक नहीं है, छुड़ाओ ठीक तरह से धर्म की स्थापना करो, ऐसे जोर से कहा। कुंती माता ने क्यों कह दिया, कुंती माता भी मामूली माता नहीं थी, बहुत विलक्षण, जिसकी गोदी में युधिष्ठिर महाराज धर्मराज खास धर्म तत्व वो जिसकी गोदी में खेले, माँ कितनी ऊंची है वो माँ, तो उसने क्यों कह दिया, माँ से दो बात नहीं सही गई, कुंती माता को दो बात सही हुई, एक तो द्रौपदी को लाकर सभा के बीच में उसका अपमान करना, तिरस्कार करना, नग्न कर दो इसको, अरे तुम भाई भाई लड़ो मरो, जो जीतो हारो कुछ तुम करो, कुछ हमारी पुत्र वधु कुल वधु उसका तुम तिरस्कार करते हो, ये माँ को नहीं सहा हुआ। एक कन्हैया आया महाराज समी का प्रस्ताव लेकर के, तो ये चारों आदमियों ने विचार किया, स्वरूपदास जी ने पांडव समुद्र चंद्रिका लिखी एक कविता में छोटा सा कोई, उसमें जो चंदा चौकड़ी कहा है दुर्योधन दुशासन करण और शकुनी, ये चार मिलकर करते थे, कृष्ण भगवान को मानने की तैयारी करी साथी की, उसने कहा कि आप देते हो व्याख्यान, आपके लिए सामान तैयार हो रही है, कैद करने जाओगे, कैद में पढ़ना पड़ेगा, आप व्याख्यान दे रहे हो यहाँ पर, दूसरी आते ही भगवान जी कहते मेरे को कैद करेंगे, कौन है वो कैद करने वाला? विरोध ने बात कर रहे थे अलग, अरे क्या पता लगे उनको, पता लग गया बात का। बारह बड़ा देखा विराट को मूर्छित हो गए, मूर्छित हो गए, मेरे को मैं अकेला हूँ, तुम क्या समझते हो तुम मेरे को? भीष्म और द्रोण आदि तो बस स्तुति प्रार्थना करने लगे, ऐसा विराट को दिखाया। तो कृष्ण भगवान का ऐसा अपमान किया मेरे कन्हैया का, माँ कुंती जी सहा नहीं गया। तो संधि का प्रस्ताव लेकर शांति के लिए जाते हैं, उनको कैद कर दोगे। तो ये दो बातों की भय करके माँ के बड़ा दुख हुआ, इस वास्ते इन दुष्टों का नाश करो। अब दुष्ट ये जीने लायक नहीं है, राज्य के लायक नहीं है। ये तो कोई राजा हो कोई नहीं, माता कुंती को क्या परवाह है, कोई बात नहीं, अपने बैठे जैसे आनंद जैसे जाओ, कोई बात नहीं है। बेटों के लिए ऐसी बात नहीं थी कि वो युद्ध करने को कह दे, नहीं तो वह न्याय करते हैं। ऐसा हमारी कुल वधु को इतना तिरस्कृत करते हैं, इन दूसरों का नाश करना चाहिए। जैसे कुंती भाषा ने कहा, तो ये शासन है विलक्षण, राजाओं का शासन और ये धर्म का शासन, नीति का शासन, असली तरह से पारमार्थिक शासन है ये। जो कर्मधारी ने आंख में पट्टी बांध दी तो शासन से बांधी, कोई किसी दबाव से बांध गया कि धर्म है ये हमारा कर्तव्य है। पति को जो सुख नहीं वो सुख मैं कैसे ले लू, देखने का सुख तो पट्टी बांध रही बात की। महिलाओं की बड़ी विलक्षणता, सूझ बड़ी विलक्षण है, इनका विचार बड़ा विलक्षण, बड़ा शुद्ध, बड़ा निर्मल है, पर है मातृशक्ति का, स्त्री का नहीं है। युद्ध हुआ सीता जी के लिए, युद्ध किया गया रावण के साथ, युद्ध किया वहां लक्ष्मण जी मूर्छा हुई तो उसे भगवान ने कहा गंधारी हान विशेष क्षति नहीं, अगर सीता न मिले तो विशेष हानि नहीं है, भाई हमारा बन जाएगा, मिलेगा जगह सहोदर भ्राता, ऐसा भाई नहीं मिलेगा, वो मैं कहां से लाऊंगा। इस बात से इसलिए हमारे तो बहुत है। तो वहां राम जी ने खुद ने कह दिया नारी हानि विशेष क्षति है, वो विशेष नुकसान नहीं है, पर भाई हमारा पत्र आ जाएगा, मर जाएगा ना। माता सुमित्रा ने भेजा और कहा है रामम दशरथम विद्धि, राम स्थिर हुए माम विद्धि तेरी घात हो जाओ, ये जनक राजपुत्र है ना वो मेरा स्वरूप है, अयोध्या मातुम विद्धि जंगल है वो अयोध्या है, गच्छता तेता सुमित्रा जाओ खूब जाओ, तू सेवा में जाओ, सेवा ठीक से करना, उस गलती न आ जाए। ऐसी माता सुमित्रा ये माँ माँ है जो अपने बेटों को रिश्ता दे, पुत्र बती जुवती जगह सोई रघुबर भक्त जासूत हो गई, न तो वहां से भरी बात बियानी बियानी पशुओं में लगता है, वो पशु है पशु पैदा किया है, जो राम विमुख है ऐसा पुत्र। तो पुत्र माँ इससे पुत्रवती होती थी कि जैसे भगवान का भक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, ऐसे पुत्र हो, उसे माता अपने पुत्रवती मानती है कि मैं बेटे की माँ हूँ, माने संसार में बेटे की माँ का आदर होता है, बेटा चलने जाता है ना तो उस स्त्री का माँ आदर बढ़ जाता है, पर तो माता सुमित्रा कहती बेटे की माँ तो वही है, पुत्र उसी से उसी से सोई न तो रुबा से बलि बाद बियानी राम विमुख सुत से जाने। तो राम विमुख होना नहीं चाहिए। तो जितने संत महात्मा अच्छे अच्छे हुए हैं उनकी बातें सुनी है तो प्राय था है कहीं कहीं और भक्त हो जाए, परंतु माताएं अच्छी हुई है जिनमें वो संत अच्छे हुए हैं। तो ये संत महात्माओं का शासन लोक परलोक सब तरह शुद्ध करने वाला है, निर्मल बनाने वाला है, इनकी आज्ञा को मानना है वो ठीक है। तो आज श्री रामदास जी महाराज का एक दिन हुआ, कल उस दिन हुआ था, आज उत्सव उसी को लेकर हो रहा है, वही आज बरसी है। तो वही संत महात्माओं की आज्ञा मानना, उनकी वाणी है, उनका कथन है, उनके अनुसार से अपने को चलाना है, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। वो शासन तो जबरदस्ती कर लेंगे लोग, राज का शासन तो डंडे की जोर होता है, यहाँ धर्म की जोर होता है, वो तो राजा खुद दंड दे करके उनको ठीक रखता है। डंडा सुप्तेषु जागृति, डंडा है ना सोते हुए जागता रहता है, डंडा ये राज से डर रहता है, ये बात इधर उन काम नहीं करता, तो भय से होता है। और यह भय होता है साथ में महाराज को मालूम नहीं हो जाएगा, अरे ऐसा करते ना महाराज नहीं करेगा, लड़ाई करते हो आपस में खटपट करते हो, तो वो महाराज बड़ी सात्विकता से हो जाता है सब। आपस में प्रेम था, मेरे कुछ देखा हुआ भी है, सत्संग के नाते प्रेम था, तो सत्संग के नाते निमंत्रण और होता है ब्याह शादी में, यानी कन्या का पुत्र का ब्याह करना है तो बिरादरी को लेकर निमंत्रण होता है, एक सत्संगियों को लेकर निमंत्रण होता है, हमारे सत्संग ही है, उन सत्संगियों को निमंत्रण करना है, वहां को बुलाना है, कोई हमारे वो एक भाई को एक अलग है, वो सत्संग है नाम सत्संग है, ऐसा बचा होता है उसका प्रेम होता है। तो ये शासन होता है संत महात्माओं का, ऋषि महर्षियों का, जंगल में रहते हैं अपने गाय का दूध पी लिया बस, मौज मरे कोई जरूरत नहीं किसी बात की, कंद मूल फल जो मिल जाए उसे निर्वाह करते थे, और राजा लोग जाकर के उनसे आज्ञा मांगते थे, कोई काम करना हो सलाह करनी हो तो उन महाराजा से लेते हैं, उनका हुक्म चलता है। जंगली बाबा ऐसे कुछ नहीं, कोई बात में पहुंच नहीं पल सुन कुछ नहीं, इनका शासन होता है, तो ऐसे शासन के अनुसार चले तो आदमी का कल्याण होता है, लोग मतलब दोनों शुद्ध होते हैं, भाव शुद्ध होने से लौकिक राजा की जरूरत नहीं होती, वहां राजा की जरूरत होती है उद्दंड आदमियों के लिए, जो उसंगल होते हैं उद्दंड होते हैं, ठीक धर्म का आदर नहीं करते, अपने आचरण ठीक नहीं है, ऐसों के लिए राजा का शासन होता है। और संत महात्माओं का शासन होता है वो तो बड़ा सात्विक, संतों के लिए महात्माओं के लिए अच्छे पुरुषों के लिए होते हैं, तो अच्छे पुरुषों के लिए राज के शासन की जरूरत नहीं, वो तो स्वतः ही शासन में रहते हैं, स्वाभाविक ही अपना संयम रखते हैं, नियम रखते हैं, ठीक तरह से चलते हैं, जिसमें लोग उनका स्वतः शुद्ध होता है, स्वाभाविक सिद्ध हो जाता है, ऐसे शासन की बात है। तो संत महात्माओं की वाणी का पाठ करना, जप करना और उनके नियमों का पालन करना, वैसे ही अपना जीवन सात्विक जीवन बनाना कि जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधरे। तो यहाँ आए हैं अपने, तो ये रामायण का पाठ अभी शुरू कर दिया, कुछ वर्षों से ज्यादा होता है, तो ये तो आ रहा है बहुत वर्षों से, हजार संवत 1700 वर्ष से ही गोजार तो सही है, 1700 पूरा हुआ, 1800 1900 और ये 2000 चल रहा है, तो 250 पुणे पुराने 100 वर्ष हो गई, कितने वर्षों से यहाँ वर्षा होती है, वर्ष ही होती है, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग आते थे पहले, मैं जब छोटा था तो ये गाड़ी यहाँ मेरे सामने हुई, गाड़ी नहीं थी यहाँ, रेल नहीं थी, पैदल आया करते, शाम को वहां से चलते शिवाली सागर टी बम सो जाते, सो जल्दी उठे फिर यहाँ आ जाते, ऐसे काम पड़ा है, बच्चा था तो उस समय ऊपर पहले पहले गाड़ी यही चले था, गाड़ी चढ़ना पहले सीख लिया था, गाड़ी शुरू हुई थी यहाँ, नहीं तो पैदल आते ऊँटों पर आ जाते, से संत आते बना जाओ, कितना आनंद होता था, कैसा उत्सव होता था, कैसे मिलकर रहते थे, कैसा स्नेह होता था आपस में, गुरु धर्म की कितनी विलक्षणता थी, जितना ही गुरु धर्म विलक्षण लगता है उसकी विलक्षणता होती है, ये बात देखा है, आप जो अपना भेद है उस भेद में आप देख लेना, गुरु की प्रति जैसे आदर होगा उसकी उन्नति होगी, ये नियम है, और गुरु पर ही आदर नहीं होगा तो उसकी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि वो आदर करने वही तो शासन हुआ, शिष्य का मांगा हुआ शासन होता है, और यह प्रजा नहीं मांगती है, राजा शासन करता है, और वे प्रजा जो शिष्य है वे शासन चाहते हैं कि हमारे ऐसा करे, हमने से बूढ़े बड़ों से सुना है, हमारे बूढ़े संत थे सुनी है, श्री राम जी महाराज थे हमारा राजा गुरु, वो लाठी नगरी करते रहे, इतने खुश होते कि महाराज लाठी के बाद जन्मराज जी लाठी हमारी कभी पड़ेगी ही नहीं, उठाते थे करते थे, मारा नहीं कभी, धमकाते थे हमें, सहते मेरा राठी मेरे पड़े, मेरे मारे पड़े, मेरे पड़े, ऐसे मानते थे, बूढ़े बड़े कहते थे, हमारा जन्म कैसे हुआ हमारा तो पता नहीं है, परंतु उनकी बातें सुनी है ऐसी, इसलिए कि विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। तो ये शासन था धर्म का, बड़ा प्रेम का, बड़ा आदर का, विशेष महत्व का, मानने वाले शासन मानते थे। तो वेग में मैंने देखा है ऐसा, जो गुरु धर्म है जिनके भीतर उनके ऊपर श्रद्धा भक्ति है, उनका आदर होगा, उनके महत्व बढ़ जाएगी, महत्ता जरूर बढ़ेगी। और गुरु से जहाँ ही रसोई हो जाए, नातिमानता के विभीषण में मैंने सुना है कि अतिमानता क्या है, कि गुरुजनों से भी आदर चाहना, गुरुजन हमारी गर्ज करे, वे भी हमारा आदर करे, ये अतिमानता है। मान्यता तो ऐसे उड़ान होता ही सबकी, परंतु गुरुजनों के सामने में अपना अभिमान चाहना, हमारा अभिमान रहे, हम अहंकार करे, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, उन्नति में बाधक चीज है। जितना गुरु सत्कार हुआ, जितना नम्रता होगी, उतने उसकी विलक्षणता आप से आप आवेगी, स्वतः ही आवेगी, स्वाभाविक ही। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कृषा यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। उपनिषदों में आता है कि यस्य देवे परा भक्ति, परमात्मा में भक्ति हो, और यथा देवे तथा गुरु, वैसे भक्ति हो, तो उसको सब सी जाएंगे, सब कितनी बातें बढ़िया आप सब आ जाएगी। तो वैसी बात है, महाराज, भावना भीतर होने से उनकी वृद्धि होती है। जहाँ भावना नहीं हो, ईर्ष्या पैदा हो जाए, अपने समकक्ष हो जाए, तो फिर वहां तुम्हारा फिर वहां वो उन्नति नहीं रहेगी, वो प्रभाव नहीं रहेगा, वो दबदबा, वो विलक्षणता नहीं रहेगी, वो गुरु का आदर से रहती है, उनके आदर करने से विलक्षण आती है, स्वतः आती है। वे ये नहीं चाहते हैं कि हम गुरु की इसलिए भक्ति करते हैं जिससे हमारा दबदबा और हमारा प्रभाव है, ये भाव नहीं होता उनकी, इनकी उनकी कोई ऐसा तेजी पैदा नहीं होती, उनकी स्वतः ही भावना है कि हमारा कर्तव्य है, तो गुरु महाराज जैसे राजी रहे, इसी बेहतर से हम चले। अरे वे राजी किस बात से होते हैं, जैसे माँ है, वो माँ राजी कैसे होती है कि बस भोजन कर रहे, अपने हाथ से माँ भोजन करा दे, ऊपर हाथ फेर दे, भोजन करा दे, अरे भोजन अच्छा कर दिया, आज सोरे जी सोर हो गया, माँ जी सोर हो गया, जैसे माँ खिला करके उसकी पुष्टि से राजी होती है, ऐसे ही संत महात्मा भजनानंदी विजय त्यागी अपने शिष्यों से उनको देख कर ही राजी होते, कि बहुत अच्छी बात है, उनका शास्त्र यही है। जैसे माता है शरीर की धन की धननी होती है, तो शरीर के ठीक होने से होते हैं, संत महात्मा उनके गुणों की देवी संपत्ति, उनकी आध्यात्मिक उन्नति की माता होती है, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति देख करके और विलक्षण में आते कृष्णता अलौकिकता आती है। तो वो भाव होता है गुरु भक्ति से, गुरु भक्ति से स्वतः सदबुद्धि होती है, श्रेष्ठ बुद्धि होती है, विकास होता है, प्रकाश आता है, विलक्षणता आती है। वहां पर अगर ईर्ष्या द्वेष ऐसे कुछ हो जाते हैं, भाई वह भक्ति को नहीं आती, वह विलक्षणता नहीं आती, अलौकिकता नहीं आती, वो पहले आई हुई है, वो डट जाती है। शास्त्री भाई गुरु भक्ति से आई है, गुरु भक्ति क्या है, भगवान की भक्ति गुरु भक्ति दोनों हो जाती है, भगवान का भजन करे, अपने नियत ठीक रखे, तो दूर बैठे बैठे संत राजी हो जाते हैं, विलक्षण प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। एक संत से चातुर्मास किया तो एक माता जी थी, उसकी बहुत भक्ति थी, और कहा महाराज आप फिर कब पधार लोगे, तो बेटा जब तुम्हारा बिना लिखा पत्र आएगा तो बाहर, बिना लिखा पत्र क्या होता है भाई, ऐसा पत्र हो आएंगे। तो उसने बहुत भजन स्मरण किया, भाई अपना सुधार किया, तो कई संत थे वहां पहुंच गया, हम उसे कि एक माता जी है बहुत अच्छी करती है, तो भाई अब जाएंगे, अब तो पत्र आ गया, बिना लिखा पत्र आ गया, जाएंगे संत वहां से। तो संत क्या चाहते हैं, जैसे माँ होती है शरीर की, तो शरीर की पुष्टि चाहती है, ऐसे विद्वान गुरु होते हैं, वो उसको विद्वान देखना चाहते हैं, संत महात्मा होते हैं अपने शिष्यों को संत महात्मा देखना चाहते हैं, इसलिए माँ होती है इसको देख रहे पुष्ट होते हैं, उसको पुष्टि पुष्टि देख करके पुष्टि करते हैं, अपने खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जी भी सारी बात है, अपना सुधार करो, अपना आचरण शुद्ध करो, अपने भाव शुद्ध करो, अपने निर्मलता है, श्रद्धा है, भक्ति है, उत्साह है, इनको लेते हुए अच्छे काम में लगो। देखो आप समाचार आपसे आप उन्नति होगी, आपसे आप आदर हो जाएगा, आपसे आप बिना की हो जाएगा। ऐसी बातें है सब, तो आएगी कैलोरी हमारा घड़ी बताते हैं क्या करें। हमारा स्वभाव है बोलने की आदत है। मैं यहाँ चला गया था श्री जयदानी सेठ जी के पास, सेठ जी का व्याख्यान व्याख्यान अध्यापक आया हूँ। ये व्याख्यान देना, सुनाना, गाना बजाना सुनाना और करना, शिक्षा देना, कुंडा कथा करनी, ये सब किया था पहले, सब किया हुआ है। सबका बात नहीं, रामायण बात नहीं, करनी भागवत करनी, कथाएं करी, फिर गया वहां महाराज। पर उन्होंने ऐसा एक महाराज मेरे को बना दिया, अब कहने का एक व्यसन है हमारे। जो कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते हैं, और सुनाने वाला कोई ठीक मिल जाए तो सुनता हूँ। दोनों बात है हमारे, सुनने की भी शौक है, सुनाने की भी शौक है। बात पैदा हो जाती है, संत महात्माओं का वरदान है, भगवान की कृपा है। इस बात में तो कहा करता हूँ अपने मारवाड़ी कहावत कि अंधोर तंदूर बाबू राम के बजाव है, भगवान की कृपा से बातें आ जाती है। मेरे को खुद को आज से आवे कभी कभी, ऐसी बातें कहां से लिया, कैसे आ गई, वो आ जाती है। इन लोगों आप लोगों की कृपा से हमारे पास नहीं है, लोगों को बैम पड़ जाता है कि स्वामी जी बहुत जानते हैं, मेरे को आज से जानते हैं। अब क्या करें, बैम हो जाता है उनको, हम तो जानते हैं साधारण कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा ये बात नहीं बता। अब कोई बात पूछना हो तो पूछो। पुराने जमाने में पाठ होता था ना, तो पाठ में परम बंधन बोलते, पाठ के बाद में संत बोलते थे, पद बोलते थे, पद बड़े सुंदर, कोई गाजा बजा बोलते अच्छे अच्छे। अब आजकल तो हम लोग हो गए राजसी, हो हमारा गाना बजाना खूब हो, हमने भी सीखा करो। रुचि ज्यादा रही नहीं, अब सुनने की रुचि है भाई, तो आप सुनाओ कोई बढ़िया पद सुना दो।
दिन भाग हमारा जिथिन भाग हमारा, प्रभु जीरा प्यारा आया आंगन। दिन भाग हमारा,
प्रभु जीरा प्यारा आया आंगन।
दर्शन सु अखियां ठरे रे, परसत पुल के आंग। दर्शन सु अखियां ठरे रे, आज्ञा पालन जो करे रे, आज्ञा पालन सटे भगत को रंग रे। दिन भाग हमारा, प्रभु जीरा प्यारा आया आंगन। दिन भाग गंगा तट पर जो बसेरे, लागत ठंडी बाढ़।
गंगा जी पर जो बसेरे, लागत ठंडी
बाढ़। जो संता के संग सूरे, जो संता कोई तपत बुझे तत्काल रे। दिन भाग हमारा, प्रभु जीरा प्यारा आया आंगन। दिन भाग हमारा, जन्म दुखी कोई जीवड़ो रे लिखिया विधाता लेख
जन्म दुखी कोई जीवड़ो रे लिखिया
विधाता नजर मिले जब संत सूरे नजर में मिटे कर मरी रेख जीवन भाग हमारा प्रभु जीरा प्यारा आया आंगन जीवन भाग हमारा
प्रभु जीरा प्यारा आया
आंगन जीवन भाग हमारा प्रभु गंगा जमुना सरस्वती रे तीर्थ चारों धाम
गंगा जमुना सरस्वती रे तीर्थ चारों धाम
आन मिले जब साथ मेरे आन मिले सब संत बसे जही गाँव रे दिन भाग हमारा प्रभु जीरा प्यारा आया आंगन दिन भाग रीझो चाहे खींचो प्रभु जी दीजो मति विसार
रीझो चाहे
संतों सु बिछड़न मत कीजो संतों सु बिछड़न पल पल अर्ज हमार जीभिन भाग हमारा प्रभु जीरा प्यारा आया आंगन जीभिन भाग हमारा हरि जीरा प्यारा आया आंगन जीभिन भाग हमारा
चरण की रज पर किशोरी राधे चरण के रज पर चरण के रज राजपाउरी की गोरी राधे चरणन के राजपा किशोरी राधे चरणन के राजपा ओ किशोरी राधे चरणन के राजपा पड़ी रहूं जन के कौन 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 श्याम राधिका श्याम राधिका गाँव रे केसरी राधे चरणन के रजपा ओ केसरी राधे चरणन के रजपा जा रज शिव सन काजिक सेवत 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 सोई रज शीस चढ़ाऊं रे केसरी राधे सोई रज शीस चढ़ाऊं रे केसरी राधे व्यास स्वामी ने किछ विनी रखत 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 वेद विमल यस रजपाऊं चरणन के रजपाऊं